Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that you do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444 and 2342-1050. And yes, if you are calling us from outside Delhi, do not forget to add 011 as a prefix code to these numbers. I'm Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sparsh Saxena.
Dhanyawad Lalema. Namaskar, hum ek bar phir hazir hain Market Mantra ke taza ank ke saath. Aur aap sabhi shrotaon ka bahut bahut swagat hai. कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे। आज सोमवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते। आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नम्बर हैं 2342-1050 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डॉ एसपी शर्मा। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग।
या थैंक यू स्पर्श। यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस। सेंसेक्स निफ्टी क्लोज फ्लैट अहेड ऑफ यूनियन बजट। Mid and small caps rise over 1%. India's real GDP for financial year 2025 projected to grow at 6.5 to 7%. And crude oil prices dip after Biden announced his withdrawal from the presidential race.
केंद्रीय बजट से पहले सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 1% की बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी 6.5 से 7% की दर से बढ़ने का अनुमान। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार पर।
यस स्पर्श,
केंद्रीय बजट पेश होने से एक दिन पहले बाजार में सतर्कता का माहौल देखने को मिला और दिग्गज शेयरों में बिकवाली के चलते भारतीय बेंचमार्क सूचकांक लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी के साथ बंद हुए। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.13% की गिरावट से 102 अंक लुढ़ककर 80,502 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.09% के नुकसान से 22 अंक गिरकर 24,509 के स्तर पर बंद हुआ। और बात करें बीएससी के मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो मिड कैप सूचकांक 1.27% की बढ़त के साथ देखने को मिले और स्मॉल कैप 0.83% के लाभ में रहे।
Yes, and now let's have a look at the stocks in detail. The Indian benchmark indices ended lower for the second consecutive session amid selling in heavy weights as traders were cautious a day ahead of the union budget announcements. At close, Sensex was down 102 points or 0.13% at 80,502 and Nifty was down 22 points or 0.09% at 24,509. In the broader market at the BSE, the mid-cap index was up 1.27% while the small-cap index gained 0.83%. 14 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. The top three gainers today were NTPC 2.58%, Ultra Cement 2.34% and HDFC Bank 2.15%. Conversely, the three major laggards were Reliance 3.46%, Kotak Bank 3.30% and ITC 1.75%. in sectoral indices at the BSE, 13 out of 20 sectors logged gains. The top three gainers were power 1.66%, capital goods 1.52% and commodities 1.43%. On the other hand, three major laggards were realty 0.53%, energy 0.67%, while FMCG and BankEx lost 0.27% each. In the BSE, 174 companies hit their 52-week high, 42 companies hit their 52-week low. So, Sparsh, what do you make of the fact that today when we heard the finance minister come up to with the economic survey, this economic survey is almost like reflecting upon the pluses and minuses of the year gone by. Kya khoya, kya paya, aur kya abhi karna baki hai.
Ji, bilkul.
Puri roop rekha tayar hui hai.
Bilkul,
aur kal budget ekdam se pitara, jaise khulta hai, pata chalega ki which we are going, the roadmap will be there.
Bilkul sahi keh rahi hai, aur abhi pura desh इसी इंतजार में है कि कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है बजट पेश करेंगी और ये उनका सातवां बजट होने वाला है और ये नव निर्वाचित सरकार का जो है पहला बजट है.
जी जी बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर राइट एंड द वन वर्ड यू नो इफ समबडी वर टू डिस्क्राइब द इंडियन इकोनॉमी एट दिस पॉइंट व्हाट्स कमिंग अप अगेन एंड अगेन इज वन वर्ड इफ देयर वाज वन वर्ड दैट इज रिजिलियंस दैट वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी अप्स एंड डाउन्स यू नो देयर वाज पेंडेमिक एंड इन फैक्ट दिस गवर्नमेंट वाज यू नो काइंड ऑफ डेस्टिन्ड टू सी सो मच ऑफ आई वुड से एबरेशंस और डिसरप्शंस वन वुड कॉल देम. वी हैड द पेंडेमिक देन वी हैड द रशिया यूक्रेन वॉर द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वाज नॉट सो conducive, and yet the Indian economy has stood strong amid global challenges. Friends, it's really nice to know that the economy has grown over 7% for third consecutive year, driven by stable consumption demand, and it's steadily improving investment demand, and that's really a sign of great things to come, isn't it, Sparsh?
No, bilkul, bilkul, aap sahi keh rahi hain, aur is vitt varsh mein bhi jo आंकड़ा दिया गया है वो तकरीबन 6.5 से 7% का दिया गया है.
जी जी जी.
और
जी.
पिछला जो हमारा वर्ष भी था उसमें 8.2 से ऊपर की हम तेजी के साथ 8.2 की दर के ऊपर हम जो है
बढ़ेंगे. स्पर्श द फैक्ट दैट इन्फ्लेशन इज वन चैलेंज विच एनी गवर्नमेंट फेसेज. वी नो दैट इंटायर यूरोप यूएस इज रीलिंग अंडर इन्फ्लेशन. ऑस्ट्रेलिया हैज बीन सीइंग 48% इन्फ्लेशन. सो व्हेन वी टॉक ऑफ आर इन्फ्लेशन हियर इट्स आई थिंक इट्स वेरी मच अंडर कंट्रोल. The Reserve Bank of India has done a lot of good work on this, has taken a lot of measures. It's helped maintain retail inflation at 5.4%, the lowest level since the pandemic, and driven by a fall in core inflation, both goods and services. And friends, too, just to get the, you know, just to get the aankara bilkul sateek ho, the core services inflation eased to a 9-year low in financial year 24, and at the same time, core goods inflation also declined to a 4-year low. When you talk in market mantra, we're always talking about statistics, so I thought, let me come up with this.
बिल्कुल बिल्कुल. और ये देखने ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वित्त वर्ष महंगाई की दर जो है वो अभी भी लगभग 4.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है. और आप बीते पिछले कुछ साल देखेंगे तो दुनिया भर में मतलब काफी कुछ हमें देखने को मिला. इवन कोरोना आकर के गया उसके बाद भी इन्फ्लेशन का रेट जो है महंगाई की दर लगभग कंट्रोल में रही और भारत बाकी दुनिया के मुकाबले जो है अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस भारत ने दिखाई है.
जी एब्सोल्युटली यू आर राइट. एंड ऑल्दो वी आर although what's important is that very important factor is weather, because our agriculture is hugely climate based, and we have not yet been able to make our agriculture climate proof. We are still dependent on the monsoon. If the monsoon is good, certainly the growth will be very good. And so food inflation sometimes come when we talk on inflation, especially we talk in you know, at two levels. One is the short term and one is the long term. So short term you do see a little rise, that's because of the monsoon and the produce having been slowed down because of the rains, which will be fine, I think, which will be okay.
Lekin is bar monsoon kafi acha raha hai to ye ek behtar baat hai. Aur gramin kshetron ke liye specially agar aap dekhenge
to
krishi kshetra actually hamara arthvyavastha ka bahut bada bhagidar hai aur is varsh monsoon kafi acha dikhai diya hai to gramin arthvyavastha ko isse kafi mazbooti dekhne ko milegi.
Right, that's true, that's true. And government has also taken a lot of measures. You know, this minimum support price, MSP, has been now increased for many articles, for many cereals, pulses, and even millets for that matter.
Okay.
So that also gives our farmers a lot of support. And let's move on. And
तो नजर डाल लेते एक बार रुपए के ऊपर भी. विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए और 66 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. डॉलर इंडेक्स मामूली बढ़त से 104.26 पर कारोबार करता नजर आया.
जी जी जी. एंड समटाइम्स यू वंडर वेदर विच ऑफ द टू इज गुड, वेदर इट्स हैविंग टू हैव अ रूपी विच इज स्टेबल और टू हैव अ रूपी विच इज वीकर. वेल आई थिंक वी काइंड ऑफ कट अ गुड बैलेंस एंड अ स्टेबल रूपी इज मच बेटर देन अ स्ट्रॉन्गर रूपी इफ गिवन आस्ट टू मेक अ चॉइस. लेट्स मूव ऑन विद अनदर न्यूज. वेल द गवर्नमेंट टुडे इज सेड द डीक्रिमिनलाइजिंग 63 मेजर ऑफेंसेज अंडर द कंपनी लॉ हैव रिजल्टेड इन अ बूस्ट टू द मार्केट dependency reduction and ease of doing business in the country. Replying to supplementaries during the question hour in Lok Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the two special drives were launched by the Ministry of Corporate Laws for reducing pending cases. First drive was launched in 2017 and second drive was launched in 2023. She informed the House that till July this year, 6,294 withdrawals were made in various courts, and this has boosted the economy in many ways. Well, we talk about the ease of doing business and the government today when we talk of a resilient economy, quote unquote resilient, because that is the word, as I said, which can be easily attributed to our economy. The credit goes to the government for having come up with huge amount of reforms. It's been in the last 10 years on a reform mode, whether it is the MSMEs for the payment within 45 days, or it is the banks. The NPAs are now down to a very small percentage, and all that has helped bring the economy to a certain level, and we are very proud and happy about it. The country now holds the head high amongst the world, other countries that our economy is doing so well.
बिल्कुल. और हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट, हमारे आज के एक्सपर्ट, आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर एसपी शर्मा जुड़ चुके हैं. एसपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
जी शुक्रिया, थैंक यू.
All right, so Dr. Sharman, now that you're with us, we would like to ask you, what do you make of the Sensex going by a little down by 102 points? What made this happen? At 80,000 plus, we were raring to go. We still are raring to go, but what happened?
I think this is a normal profit booking, not any negative thing, because budget is coming tomorrow. So generally, people before the budget sometimes book partial profit or churn up their portfolios to one sector to the another. So that's why sometimes such kind of profit booking comes or churning happens. So nothing worries about the trajectory of Indian economy, because we are already very, very robust, and according to the economic survey, our economic picture is very bright, supported by so many reforms during the last many years, and the efforts of the government and efforts of the industry, we are moving ahead with a lot of support. So as mentioned by economic survey, that economy is on a strong wicket and stable footing.
Yes.
So that is a great thing. That is the central point of our economic survey, that now our journey is moving ahead with a lot of steam.
Yeah.
And we are marching towards the Viksit Bharat by 2047, and the government is undertaking reforms after reforms, and on the basis of these fundamental reforms, the economy is now becoming more and more robust and lucrative in the global charts, and that is the trajectory of Indian economy, which is depicted by the economic survey produced by the government of India today.
जी, बिल्कुल. और SPG, इसको अमृतकाल का बजट कहा गया है, जो जिसका पूरा देश बेसब्री से कल इंतजार कर रहा है. तो आपसे एक सवाल ये है कि केंद्रीय बजट भारत को विकसित भारत बनाने की ओर किस तरह से आगे ले जाएगा, और कल के बजट से आपकी क्या क्या अपेक्षा है?
देखिए, जो अमृतकाल में सरकार ने अभी देखा कि इकोनॉमिक सर्वे में 6 ऐसे पिलर्स बताए हैं जो हमें अमृतकाल में सपोर्ट करेंगे, जो हमें विकसित भारत बनने की तरफ लेके जाएंगे. ये 6 जो पिलर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा. फर्स्ट इज द फोकस ऑन द प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज द नंबर वन. नंबर टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर द ग्रीन ट्रांजिशन इज द सेकेंड, एंड देन द एमएसएमई सपोर्ट, एंड देन फोर्थ इज द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिफ्थ इज द टारगेटेड एजुकेशन एंड स्किल पॉलिसीज, एंड सिक्स्थ इज द एनहेंसिंग स्टेट कैपेसिटी फॉर द सस्टेन्ड प्रोग्रेस. दीज आर द सिक्स पिलर्स फॉर द अमृतकाल. जो अमृतकाल में हमें छह जो सपोर्ट हैं, जो पिलर्स हैं, वो हमें हेल्प करेंगे जो हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं 2047 तक. जी.
All right. Here I just read a report, Dr. Sharma, that government today said that decriminalizing 63 major offences under company law have resulted in a boost to the market. Many reforms have taken place. You think this is one step in that direction?
Yes, that is a great step undertaken by the government, because during the last 3-4 years there is a lot of work for the compliances. They have removed more than 40,000 compliances from the businesses and converted them from the criminal to the civil codes. So that is a great thing which is happening for the ease of doing business, right, particularly for the MSMEs. And again, they have converted the 3,400 compliances from the criminal courts to the civil courts, like the minor offences which were sometimes causing the imprisonment to the businesses, they are now shifted towards the civil courts. So that is happening in the trajectory of the compliances of the Government of India, and still they are very, very enthusiastic to remove more, because this is the start of the ease of doing business, and already we have achieved miles in the ease of doing business, but now they are more focused for the ease of doing business at the factory level, at the premises of the businesses, so that they are able to do business freely and without any fear to participate in the growth trajectory of Indian economy, as we are going to become the Viksit Bharat by 2047, and we have many aspirations that we will become $7 trillion economy by 2030, and currently for the current year we will become a $4 trillion economy. So the trajectory of Indian economy has started moving on the high road.
And is that the reason that we see a lot of FDI flows coming in, and we are sitting on great forex reserves?
Yes,
there is interest in India.
Yes, yes, because our forex reserves are at all-time high, and our FDI after the coronavirus was very, very robust. And though we are facing some slowdown in the recent years because of geopolitical developments, but the FDI chunk was very, very strong after the coronavirus, and the stock market, the robust stock market has helped the forex reserves to remain intact in the difficult times. Despite the global headwinds, we have a large chunk of, all-time high chunk of the forex reserves.
All right, a look at the economic survey right now. Economic survey 2023-24 has projected a real gross domestic product, GDP as we call it, growth of 6.5 to 7% in financial year 2024-25. On the first day of the budget session, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman tabled the economic survey in Lok Sabha. According to the survey, domestic growth drivers have supported economic growth in financial year 2023-24 despite uncertain global economic performance. The services sector continues to significantly contribute to India's growth, accounting for 55% or about 55% of the total size of the economy in financial year 2024. As per the provisional estimates, the services sector is estimated to have grown 7.6%. The survey highlights that the global trade outlook for 2024 remains positive, with merchandise trade expected to pick up. Well, according to the survey, India's services exports grew by 4.9% to over $341 billion in financial year 2024, with growth largely driven by IT, software services and other business services. It said India's banking and financial sectors have also displayed a stellar performance in 2024. On the inflation front, Reserve Bank of India expects headline inflation to be 4.5% in financial year 2025 and 4.1% in 2026. Your comment, Dr. Sharma. This is quite an overview of the economic survey which was announced by the Honorable Finance Minister.
Yes, our our economic surveys, I would say that very, very lucrative for all the segments. Like we have controlled the inflation, our manufacturing growth is robust, our capital markets are becoming more and more strong. As mentioned in one line, that strong wicket and stable footing, that is the crux of this survey, that now we have to move forward with strong and strong growth trajectory to become more and more strong in the global economy and to provide a chunk of employment opportunities for the growing young population in the country. As they have said, that now the three major segments of the economy, the government, the private sector and the academia, will collaborate to provide educate opportunities to the growing young population in terms of creating employment, in terms of creating the self-employment opportunities. So this is the, I think, a great growth engine of the Indian economy going forward.
And this synergy should happen.
Yes, yes.
For the country to progress.
As university industry linkages, right. Firstly, I would say, these linkages should become more and more strong. As per many reports and surveys, we have to connect them strongly, because sometimes they work in isolation, like the universities are working in, sometimes they are lacking in providing the adequate practical training to the students. But now the more and more connect of the universities and the industry for the practical purposes to create the employment opportunities for them will be at the top of the agenda. Because now the government has already provided 1 lakh crore opportunity in the R&D activity. That will provide a great support to enhance the university and industry linkages to create employment and to make them more resilient in the such kind of difficult times when the global headwinds are impacting and inflation trajectory remains impactful at the global level, but we have to mitigate those impacts and to create and facilitate our growing young population in terms of the employment opportunities.
Dr. S.P., अभी आपने बात करी रोजगार के बारे में भी. तो ये इकोनॉमिक सर्वे में ये भी देखा गया है कि रोजगार लगभग 78 लाख से ज्यादा हर साल 2030 तक रोजगार देने की बात की गई.
जी.
तभी हम वो सपना साकार कर पाएंगे.
राइट.
लेकिन आप क्या देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स इसमें हेल्प करेंगे
जी,
इस रोजगार को बढ़ाने में?
देखिए, रोजगार को बढ़ाने में हमारे सभी सेक्टर जो हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं. और यहां पे खास करके मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमईज में बहुत पोटेंशियल है रोजगार क्रिएट करने का. उनको सरकार ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है. पिछले अगर 2-3 वर्षों में देखें तो सबसे ज्यादा जो रिफॉर्म्स हुई एमएसएमई सेक्टर के लिए, उनको और ज्यादा हैंड होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे सरकार ने इतने कंप्लाइंसेस रिमूव किए, वो एमएसएमईज को बहुत हेल्प कर रहे हैं. तो 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं भारत में. अगर उनकी अच्छी हैंड होल्डिंग इसी तरीके से चलती है, आगे वो ग्रो करते हैं, तो अगर वो एक एमएसएमई एक रोजगार भी पैदा करते हैं तो 6 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खाली एमएसएमई सेक्टर ही क्रिएट कर सकता है.
जी.
एक बहुत बड़ी चीज है जो आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि एमएसएमई की जो हैंड होल्डिंग है, जो उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और उनके लिए जो रिफॉर्म्स, खास करके उनके पेमेंट से रिलेटेड जो सरकार ने रिफॉर्म्स की, और अभी हमने सरकार को लिखा है कि जो उनकी एनपीए की नॉर्म्स हैं, जो वो 90 डेज के बजाय उनका पीरियड बढ़ा के 180 दिन होना चाहिए, सो दैट के बहुत जल्द ही कोई ऐसी पेमेंट के उस वजह से उनके एनपीएस क्रिएट ना हो. तो ऐसी रिफॉर्म्स और भी आएंगी जिससे कि एमएसएमई सेक्टर और भी ज्यादा रोबस्ट होगा और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा. मैं बता रहा हूं आने वाले टाइम में अगले 5-6 वर्षों में जितना अभी इनके पास रोजगार है इससे डबल होने की संभावना एमएसएमई सेक्टर में है.
बिल्कुल.
एंड मोर सो बिकॉज एमएसएमई कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 48% और सो मोर देन 40% टू द जीडीपी.
जीडीपी में जो पुराना डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग अभी 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 30-31%
राइट
जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, बट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली इन द एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 40%. 40% से ज्यादा उनका जो योगदान है मैन्युफैक्चरिंग में, टोटल मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्ट्स में रहता है. तो अगले जो ग्रोथ इंजन है भारत का वो एमएसएमई है.
Bilkul.
Right. All right, before we go any further, friends, we have an announcement for you. There's a bilingual live phone-in program we have for you. It's called Public Speak. As you know, it comes every Sunday. Today, again, we have for you at 9:30 p.m. It comes every Monday, and today being Monday, we have for you at 9:30 p.m. And today, we shall be bringing an insightful discussion on ease of filing income tax returns with Soumya Achar, Commissioner of Income Tax, and Sanjeev Narayan, Chartered Accountant. While during the program, listeners will have the opportunity to pose questions to our guests relating to filing income tax returns, such as old and new tax regime and Form 16, amongst others. Well, to participate, you may simply dial the telephone number that I'm going to announce, 011-234-21050 and 011-233-1444 at 9:30 p.m. onwards today. Well, alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289-094-044 or post your questions on X with the hashtag AskAIR. Yes, Parsh, would you like to say it in Hindi, all of it?
Ji. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक केंद्रीय बजट 2024-25 पर एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। बजट से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आकाशवाणी गोल्ड को सुन सकते हैं।
Alright, look at the Asian and European markets.
जी बिल्कुल, नजर डालते हैं अब एशियाई और यूरोपीय बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज पांच प्रमुख सूचकांकों में से चार नुकसान में बंद हुए। जापान का निकेई 1.17% की गिरावट से बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.16% नीचे रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट 0.61% कमजोर रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.30% के नुकसान में रहा। वहीं हांगकांग के हैंगसेंग में 1.24% की वृद्धि दर्ज की गई। उधर यूरोपीय बाजारों में तीनों प्रमुख सूचकांक आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी के डैक्स में 1.26% की तेजी देखी गई। फ्रांस का कैक 1.22% के लाभ में था और लंदन का फुटसी 0.75% मजबूत रहा।
Now look at the oil prices. Well, oil prices were a little changed today after Joe Biden announced he would not seek a second term as US president, while investors watched for more signs that US interest rates could be cut as early as September. Brent crude decreased by 0.56% to $82.17 per barrel. U.S. West Texas Intermediate WTI is down by 0.64% to $79.62 per barrel when reports last came in. What is the link between Joe Biden stepping down as a candidate and oil prices, Dr. Sharma?
Actually, oil prices are always speculative and there is no reason of speculations, and sometimes they go up without any reason and sometimes they fall without any. So speculation happens in the oil prices, but the demand trajectory is not going to support the oil prices significantly in the coming time because the world growth is decelerating and projected at 3.1% as compared with the high growth achieved in 2022-23.
और सोना और चांदी पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोना गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। समाचार तैयार किए जाने तक अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 0.14% की गिरावट के साथ 72,886 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं चांदी भी 0.93% के नुकसान के साथ 88,814 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई।
योर कमेंट ऑन गोल्ड?
यस, गोल्ड रिमेन्स ऑलवेज bright and going forward, if the inflation is coming down in the advanced economies, particularly in US, then that will provide a great room for Fed to cut the Fed rate. That will be a major support to the gold prices to move forward. And
और ये आम निवेशक का बड़ा सवाल बना हुआ है, संक्षिप्त में बताइएगा कि गोल्ड पहले 1 लाख या फिर सेंसेक्स पहले 1 लाख?
देखिए, शायद दोनों हैंड इन हैंड रहे, ये भी हो सकता है।
बिल्कुल,
दैट्स अ टफ क्वेश्चन स्पेश। ऑलराइट, बिफोर वी वाइंड अप फ्रेंड्स, वी वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू यू फ्रेंड्स दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू टेक योर कॉल्स टुडे बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। Huge apologies there. Hopefully next time. And friends, before we wind up, here's a look at the headlines once again. Sensex Nifty closed flat ahead of union budget. Mid and small caps rise over 1%. India's real GDP for financial year 2025 projected to grow at 6.5 to 7%, and crude oil prices dip after Biden announced his withdrawal from the presidential race. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. And thank you, Dr. Sharma, for joining us and updating us with your views and reviews. And that's all I have for you, friends. This is Lalima, Anija Dang, and Sparsh signing off. Namaskar.